एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
जी हाँ, सैम हैरिस की वेकिंग अप, अ गाइड टू स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन,
यानी धर्म के बिना आध्यात्मिकता। एक ऐसा विषय जो मुझे लगता है आजकल बहुत लोगों के मन में है।
बिल्कुल, कई लोग हैं जो शायद पारंपरिक धर्मों की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाते।
हाँ, पर फिर भी जीवन में कुछ गहरा, कुछ सार्थक ढूंढ रहे हैं, शांति की तलाश में हैं।
तो क्या ये मुमकिन है? क्या बिना किसी भगवान, बिना किसी तयशुदा विश्वास के वो आध्यात्मिक शांति मिल सकती है?
यही इस किताब का सेंट्रल सवाल है। और ये भी कि ये जो हमारा मैं है, ये सेल्फ, ये आखिर है क्या? कहीं ये वो तो नहीं जो हमें लगता है?
मतलब ये एक भ्रम हो सकता है।
हाँ, हैरिस का तर्क इसी तरफ जाता है। और कैसे हम चेतना यानी कॉन्शियसनेस को तर्क और विज्ञान की नजर से देख सकते हैं?
ये तो बड़े मुद्दे हैं। तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। सैम हैरिस कोई मतलब आम लेखक तो है नहीं?
जरा भी नहीं, वो तो एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, दिमाग के वैज्ञानिक।
हाँ, UCLA से PhD की है उन्होंने, और fMRI जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि भाई विश्वास, अविश्वास, ये सब दिमाग में कैसे काम करता है।
और दिलचस्प बात ये भी है कि उन्हें न्यू एथीस्ट यानी नए नास्तिकों में गिना जाता है,
जिन्होंने धर्म की काफी तीखी आलोचना भी की है। उनकी किताब दी एंड ऑफ फेथ काफी चर्चित रही थी।
बिल्कुल, लेकिन जो बात उन्हें एकदम अलग बनाती है वो है उनका ध्यान का गहरा अनुभव, सालों का।
हाँ, मैंने पढ़ा है विपश्यना और ज़ोगजेन जैसी बौद्ध तकनीकों का उन्होंने दशकों तक अभ्यास किया है।
तो ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, एक तरफ विज्ञान की कठोरता, सबूतों पर जोर,
और दूसरी तरफ ध्यान का वो सीधा पर्सनल अनुभव।
सही, और इसीलिए वो न तो कहते हैं कि भाई आंख बंद करके मान लो, और ना ही वो हमारे अंदरूनी अनुभवों को सिरे से खारिज करते हैं।
वो एक तरह से एक पुल बना रहे हैं दोनों दुनियाओं के बीच।
हाँ, वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता के जो गहरे अनुभव हैं, जैसे वो शांति, वो जुड़ाव का एहसास, या अपने छोटे से मैं से परे जाने का अनुभव,
सेल्फ ट्रांसेंडेंस जिसे कहते हैं,
हाँ, वो किसी धर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की ही एक खूबी है जिसे हम खोज सकते हैं।
तो किताब का लक्ष्य क्या है फिर? मतलब वो साबित क्या करना चाहते हैं?
देखिए, उनका लक्ष्य है आध्यात्मिकता को धर्म की जकड़न से, और कभी कभी जो वो थोड़ी अजीब सी लगती है ना, न्यू एज बातें, उनसे छुड़ाना।
अच्छा, उसे एक सॉलिड बेस देना चाहते हैं तर्क का, अपने अनुभव की जांच का और विज्ञान का।
बिल्कुल, हैरिस कहते हैं कि बुद्ध जैसे लोगों की जो सबसे कीमती खोज थी वो यूनिवर्स या भगवान के बारे में नहीं थी,
बल्कि किसके बारे में थी?
वो थी हमारे मन के बारे में, उसकी प्रकृति क्या है, और हमारा जो ये दुख है, साइकोलॉजिकल कष्ट, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है।
तो ये किताब एक यात्रा की तरह है।
हाँ बिल्कुल, पहले तो वो हमारे इस पक्के यकीन को तोड़ती है कि हमारे अंदर कोई एक ठोस कंट्रोल करने वाला मैं बैठा है।
ये अहम या ईगो वाली बात,
जी, हैरिस कहते हैं एक भ्रम है जिसे हमारा दिमाग लगातार बुनता रहता है।
ये सुनना ही थोड़ा चौंकाने वाला है कि मैं एक भ्रम है।
है तो, और फिर वो बताते हैं कि ध्यान जैसी तकनीकों से कैसे हम इस भ्रम को सिर्फ समझ ही नहीं सकते बल्कि सीधे अनुभव कर सकते हैं और इससे मुक्त हो सकते हैं।
और लक्ष्य क्या है इस मुक्ति का?
लक्ष्य है अद्वैत जागरूकता, नॉन डुअल अवेयरनेस तक पहुंचना, जहां देखने वाला यानी स्व और जो देखा जा रहा है, विचार, दुनिया, इनके बीच का जो अलगाव है वो मिट जाता है।
वाह, ये तो काफी गहरा है। चलिए किताब के अध्यायों में थोड़ा और उतरते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं हैरिस?
पहला अध्याय है आध्यात्मिकता पर ही। यहाँ वो साफ करते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता एक चीज नहीं है।
अच्छा, क्या फर्क बताते हैं वो?
आध्यात्मिकता उनके लिए आत्म उत्थान की खोज है, ये अनुभव करना कि हमारा ये जो अलग थलग स्व होने का एहसास है वो असल में एक भ्रम है।
और वो मानते हैं कि धार्मिक सिद्धांत अक्सर इस सच्ची खोज के रास्ते में आ जाते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि जो डॉगमा है, हठ धर्मिता, वो सच्ची समझ में रुकावट डाल सकती है। वो अपने शुरुआती अनुभवों का भी जिक्र करते हैं, जैसे साइकेडेलिक्स के साथ।
हाँ, जिनसे उन्हें लगा कि चेतना में बड़े बदलाव मुमकिन है।
बिल्कुल, फिर आता है दूसरा अध्याय, चेतना के रहस्य पर, द मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस।
ये थोड़ा फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक लगता है।
हाँ, ये बुनियाद तैयार करता है। चेतना, वो कहते हैं, हमारी असलियत का सबसे बुनियादी हिस्सा है। हम बाहर की दुनिया पर शक कर सकते हैं, पर इस बात पर नहीं कि हम अनुभव कर रहे हैं।
वो डेकार्ट वाली बात, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ,
कुछ वैसा ही, पर अनुभव पर ज्यादा जोर है। वो चेतना की कठिन समस्या यानी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी जिक्र करते हैं।
हाँ, कि ये फिजिकल दिमाग कैसे सब्जेक्टिव अनुभव, मतलब वो एहसास, वो फीलिंग्स कैसे पैदा करता है।
जी, और भले ही विज्ञान इसे अभी पूरी तरह न समझ पाया हो, हम अपनी चेतना की जांच अंदर से तो शुरू कर ही सकते हैं।
कैसे?
चेतना को एक खाली जगह की तरह देखें जिसमें सारे अनुभव, विचार, भावनाएं, आवाजें, रंग आते हैं और चले जाते हैं।
और फिर आता है तीसरा अध्याय, स्वयं का रहस्य, द रिडल ऑफ द सेल्फ। आपने कहा था ये किताब का बौद्धिक केंद्र है।
हाँ, क्योंकि यहीं पर वो इस मैं के विचार पर सबसे जोरदार हमला करते हैं, कई तरफ से।
जैसे
वो डेविड ह्यूम का हवाला देते हैं, जिन्होंने कहा था कि जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें बस विचारों, एहसासों की एक धारा मिलती है, कोई एक स्थायी देखने वाला या मैं नहीं मिलता।
और न्यूरोसाइंस, उसका भी जिक्र है।
बिल्कुल, वो गैजनेगा के स्प्लिट ब्रेन प्रयोगों की बात करते हैं।
हाँ, वो बड़े मशहूर हैं, जिनमें दिमाग के दो हिस्सों का कनेक्शन काटने पर ऐसा लगता था जैसे एक ही शरीर में दो अलग चेतनाएं हों।
जी, इससे ये इशारा मिलता है कि हमारा ये जो एक होने का एहसास है, ये मैपन, ये कोई आत्मा जैसी चीज नहीं, बल्कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों के काम करने से पैदा हुआ एक नतीजा है, एक कहानी है जो दिमाग खुद को सुनाता है।
और हैरिस कहते हैं कि यही स्व का भ्रम हमारे ज्यादातर दुख का कारण है।
हाँ, गुस्सा, डर, जलन, चिंता, ये सब अक्सर इसी मैं को बचाने, बढ़ाने या उसके आहत होने से जुड़े होते हैं। तो जागना मतलब इस भ्रम को सीधे सीधे देख लेना।
तो ये तो हुई दिमाग की कसरत, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पर इसे अनुभव कैसे करें, यही ध्यान की बात आती होगी।
बिल्कुल, अध्याय चार है ध्यान यानी मेडिटेशन पर। ये वो तरीका है जिससे हम इस मैं के भ्रम को सिर्फ समझते नहीं बल्कि अनुभव में तोड़ते हैं।
और ध्यान का मतलब मन को खाली करना नहीं है जैसा कई लोग सोचते हैं।
नहीं, हैरिस साफ कहते हैं, ये मन खाली करने की कोशिश नहीं है, ये तो बस जो भी हो रहा है अभी इसी पल उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की कला है।
माइंडफुलनेस या विपश्यना पर वो काफी जोर देते हैं।
हाँ, विचारों, भावनाओं, शरीर की संवेदनाओं को बस देखना, बिना जज किए, बिना उनसे चिपके, बस एक साक्षी की तरह।
और लक्ष्य क्या है इसका?
लक्ष्य है ये पहचानना कि विचार बस चेतना में आते हैं, वो आप नहीं हैं, आप वो खाली स्पेस हैं जिसमें विचार आ जा रहे हैं।
ये फर्क महसूस करना कि मैं सोच रहा हूँ और एक विचार उठ रहा है।
एकदम, और फिर वो ज़ोकचैन या नेचुरल अवेयरनेस की बात करते हैं।
वो क्या है?
वो एक और गहरी अवस्था है जहाँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भेद, मतलब देखने वाला और देखी जाने वाली चीज का फर्क ही घुल जाता है, बस एक सहज अखंड अनुभव बचता है।
जैसे आप किसी खूबसूरत नज़ारे में खो जाएं और खुद को भूल जाएं।
हाँ, कुछ वैसा ही, पर ज्यादा टिकाऊ और गहरा। हैरिस इसे अंतर्दृष्टि का शिखर मानते हैं।
ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या ये रास्ता आसान है? हैरिस कुछ खतरों की बात भी करते हैं।
हाँ, पांचवा अध्याय इसी पर है गुरु, मृत्यु, ड्रग्स और दूसरी पहेलियाँ। वो आध्यात्मिक रास्ते के कुछ अंधे मोड़ों पर रोशनी डालते हैं।
जैसे कि गुरुओं का मामला?
हाँ, वो गुरु इंडस्ट्री की काफी आलोचना करते हैं, चेतावनी देते हैं कि किसी करिश्माई गुरु पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, सवाल पूछो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो।
बौद्धिक ईमानदारी बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, वो साइकेडेलिक्स पर भी बात करते हैं, मानते हैं कि इनसे कभी कभी स्व उत्थान की झलक मिल सकती है,
पर वो जोखिम भरे हैं और अभ्यास का कोई शॉर्टकट नहीं है।
सही, और वो नियर डेथ एक्सपीरियंस या पुनर्जन्म जैसी बातों पर भी वैज्ञानिक संदेह बनाए रखते हैं, उनका जोर हमेशा तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव पर रहता है।
ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं वो क्या होंगे?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि धर्म के बिना भी सच्ची गहरी आध्यात्मिकता संभव है।
हाँ, कि अनुभव ज्यादा जरूरी है, न कि कोई खास विश्वास या ढांचा।
दूसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, ये जो हमारा स्व या अहंग है, ये एक भ्रम है, ये हमारे दिमाग की एक रचना है और हमारे ज्यादातर मानसिक दुख इसी से जुड़े हैं।
तीसरा,
चेतना ही अनुभव का आधार है, सब कुछ इसी मैदान में हो रहा है, तो लक्ष्य दुनिया बदलने से पहले उस स्पेस को समझना है जिसमें दुनिया दिख रही है।
चौथा संदेश ध्यान के बारे में होगा, है ना?
हाँ, कि ध्यान कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि अपने मन की जांच करने का एक तरीका है। एक तरह का फर्स्ट पर्सन साइंस, मन को जानने की एक तकनीक।
जैसे आपने वो कोट बताया था, आध्यात्मिकता विश्वास का नहीं बल्कि तकनीक का मामला है।
बिल्कुल। और पांचवा, अद्वैत का जागरूकता का महत्व, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भेद को मिटाना, यही असली मुक्ति और शांति लाता है।
और आखिरी छठा संदेश, शायद वो सावधानी वाला है।
ही खोल कर चलना है, झूठे गुरुओं और अंधविश्वास से बचना है। सच्ची आध्यात्मिकता तर्क से भागना नहीं बल्कि उसका और गहरा इस्तेमाल है।
ये सारे पॉइंट्स बहुत विचार करने लायक हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ खास कोट्स।
हाँ बिल्कुल है। एक तो हमने अभी बात की, वह भावना जिसे हम मैं कहते हैं स्वयं चेतना में उत्पन्न होने वाला एक विचार है।
ये सीधा चोट करता है हमारे मैं के एहसास पर कि ये कोई बॉस नहीं, बस एक और ख्याल है।
दूसरा, चेतना इस ब्रह्मांड में एकमात्र चीज है जो भ्रम नहीं हो सकती।
हाँ ये भी जबरदस्त है। हम किसी भी चीज पर शक कर सकते हैं पर इस बात पर नहीं कि अनुभव हो रहा है। चेतना ही वो ग्राउंड जीरो है जहां से सब शुरू होता है।
और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, पारंपरिक स्व विचार का प्राणी है लेकिन विचार से इतने मध्यस्थ हुए बिना जीना संभव है।
मतलब हमारा मैं लगातार चलने वाली इस दिमागी बकबक से बना है।
हाँ, और ध्यान हमें सिखाता है कि इस बकबक को बिना पूरी तरह बंद किए भी इससे थोड़ी दूरी बनाकर जिया जा सकता है। उसे इतनी बारीकी से देखना कि उसमें वो मैं कहीं टिकता ही नहीं।
वाह, तो ये तो हुई गहरी बातें। अब आते हैं असली सवाल पर, रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब का क्या फायदा, कैसे लागू करें इन्हें?
देखिए, सबसे सीधा तरीका तो है ध्यान का नियमित अभ्यास। चाहे 5 मिनट से ही शुरू करें, बस बैठें और अपनी सांस पर ध्यान दें, या शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उन्हें महसूस करें, या मन में जो विचार आ जा रहे हैं उन्हें बिना पकड़े बस देखें।
और इससे होगा क्या? मान लीजिए मैं रोज 10 मिनट ऐसा करता हूँ।
पहला असर तो होगा भावनात्मक संतुलन पर। जैसे हमने वो ट्रैफिक जाम का उदाहरण लिया था, गुस्सा उठेगा पर आप शायद उसे पकड़ेंगे नहीं। आप देखेंगे, अच्छा ये गुस्सा है, ये शरीर में ऐसे महसूस हो रहा है, ये विचार आ रहा है। ये थोड़ी सी दूरी ही उस गुस्से की धार कम कर देती है।
हाँ, मतलब रिएक्शन देने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की गुंजाइश बढ़ जाती है।
बिल्कुल। दूसरा, फोकस और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की क्षमता बढ़ती है। आप काम करते वक्त या किसी से बात करते वक्त ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, मन कम भटकेगा।
ये तो आजकल बहुत जरूरी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं।
और तीसरा, जब आपको ये अनुभव होने लगता है कि मैं और तुम की दीवार उतनी मजबूत नहीं है, तो करुणा और सहानुभूति अपने आप बढ़ती है। दूसरों का दुख देखकर ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है।
क्योंकि आप महसूस करते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं एक ही नाव में है, चेतना की नाव में।
हाँ बिल्कुल। तो ये तरीके हैं जिनसे ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकते हैं।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है इस किताब से?
मेरे लिए तो ये है कि एक गहरा संतुष्टि देने वाला आंतरिक जीवन हर किसी के लिए खुला है। आपकी मान्यताएं कुछ भी हों, आप तर्क और अनुभव के रास्ते इस तक पहुँच सकते हैं। ये बस नजरिए का फेर है। खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानने से जिसके पास एक मन है, खुद को वो चेतना समझने तक जिसमें मन, विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि स्व का भाव भी प्रकट होते हैं।
हाँ, और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारा अलग स्व होने का एहसास है, यही हमारे दुख का बड़ा कारण है। और ये एक भ्रम है जिसे ध्यान से देखा और समझा जा सकता है। ये जानना ही अपने आप में एक राहत है।
और ये भी कि ध्यान सिर्फ आराम करने या तनाव घटाने की चीज नहीं है, बल्कि ये अपने मन की प्रकृति को समझने का, इस भ्रम को तोड़ने का एक वैज्ञानिक उपकरण है।
बिल्कुल। वेकिंग अप वाकई एक पुल बनाती है प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच। उन सबके लिए एक गाइड है जो महसूस करते हैं कि जीवन में इस दिमागी शोर शराबे से ज्यादा भी कुछ है।
तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
हाँ।
जरा सोचिए, अगर हम में से ज्यादा लोग वाकई इस अलग अलग स्व के भ्रम से आगे बढ़कर चेतना की इस साझा गहरी सच्चाई को पहचाने लगे, तो ये दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, आपसी झगड़े, नफरत, पर्यावरण का संकट, इनसे निपटने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकता है? क्या हम ज्यादा समझदारी और करुणा से काम नहीं लेंगे?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।